ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुके है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
यूके, स्विट्जरलैंड ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਪਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669 ਜਾਂ 437-423-2666।
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112 سونا یعنی گولڈ خریدنا یا بیچنا ہے تو ایک قابل اعتماد نام روبی جولرز یاد رکھیے گا. اسلم یا اکرام بھائی سے ملاقات کیجیے گا. ہاتھ کے بنے ہوئے یا مشینی زیورات, اتنی ویرائٹی ہے چوڑیوں اور کروں میں, چینز میں. آپ سونے کی خریداری کے لیے ایک با اعتماد نام روبی جولرز وزٹ ضرور کیجیے گا. پروگرام کا ریفرنس دیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور سونے کی ریپیئر کوئی چارج نہیں. روبی جولرز, 7086 ایئرپورٹ روڈ, مالٹن میں. روبی جولرز.
Pizza's Pros and Wings, 6 location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety. Ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838, www.pizzapros.ca.
Akal Truck and Loom,
Tade Truck Badshah di quality service, repair, oil change, wash te maintenance.
Ek aur khush khabri,
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck and Loop, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100, 905-565-1100.
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ. دانت نکلوانے ہیں, لگوانے ہیں, کراؤنز ہیں, بریجز ہیں, ایون اگر امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برمپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ, اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ. بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بنائیے گا, ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا. ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ, 9054578661.
Family is everything, and no matter where they are in the world, connecting with them just got a little easier. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
اگر آپ کے گھر میں بیڈ بگز ہیں یا کچن میں کاکروچز ہیں یا بیسمنٹ میں چوہے دوڑتے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی نام یاد رکھیے, بایو کیم پیسٹ کنٹرول. ہم آپ کو بہترین کوالٹی کی سروس بہترین ریٹس پر فراہم کریں گے. اس کے لیے ڈائل کیجئے 416-747-6600 یا مجھ سے یعنی آلیجا سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے 647-848-4020 647-848-4020.
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں. ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157. جی ہاں 416-570-0157.
سامعین کرام اینڈ ناظرین، ویلکم بیک اگین. اینڈ 6:05 اور 55 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نیوز کی جانب چلیں، بہت سارے لوگوں نے کال کیا ابھی. آئی تھینک یو سو مچ. الحمدللہ ہمارے لوگوں میں، چاہے وہ کسی بھی کلر، ریس اور ریلیجن کے ہوں، ایسے وقت میں جب پاکستان میں ایسا برا وقت آیا ہے سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے، تو ہر شخص کا یہ دل میں ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کی ہیلپ کروں. یہ نہیں کہ کتنے کی ہیلپ کروں، میں کس طریقے سے ان کی ہیلپ کروں. وینسڈے کو 4 بجے آئی ڈی آر ایف از گونا بی ہیئر ود اس، مگر ان دا مین ٹائم ہم نے جو یہاں سے کنٹینرز بھجوانے ہیں، اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو پی آئی اے اینڈ ہارون بھائی، کہ ہم جو یہ کنٹینرز ہیں یہاں سے بھجوائیں گے، جس کے اندر کپڑے ہوں گے، جس کے اندر ہر سائز کے کپڑے، جیکٹس ہوں گے، کمبل ہوں گے، یہ ایسی چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کے اندر جو بھی چیزیں بھجوانی ہیں وہ لسٹ کل تک کا ٹائم ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی جگہوں پہ آپ ڈراپ آف کر سکتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم پک اپ کروائیں گے. اور اس تمام چیزوں میں آپ کا ایک پائی کا خرچہ نہیں آئے گا، ایک پائی کا بھی آپ کا خرچہ نہیں آئے گا. ہم 770 AM جو ہے اس کو پورا برداشت کرے گی. تو آپ جو ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہم جگہیں بتائیں گے آپ کو، بڑی درخواست، دلی درخواست ہے آپ سے کہ آپ ان جگہوں پہ یہ جا کے یہ سامان ڈراپ آف کریں، تاکہ ان جگہوں سے ہم پک اپ کر کے پھر یہاں سے پی آئی اے کے ذریعے ہم اسلام آباد بھجوائیں گے، اور اسلام آباد میں پاکستان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جائیں گے. اس کا اجر میں نہیں دے سکتا آپ کو، شازہ جی نہیں دے سکتی آپ کو، عارفہ جی نہیں دے سکتی آپ کو، ہارون بھائی نہیں دے سکتے آپ کو. اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر تیار رہیے اور شاپنگ کرنا شروع کر دیجئے. اپنی جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہیں آپ کو، اس کے پیکٹس بنا بنا کے، پیکٹ بنا بنا کے ہم جو ہے یہاں سے بھیجیں گے. اگر کسی بھائی صاحب کا کوئی کارٹنس کا بزنس ہو، مینس کے ڈبوں کا بزنس ہے، یا وہ جانتے ہیں کسی کو جس کا ڈبے کا بزنس ہے، اگر وہ کچھ ڈبے ڈونیٹ کرنا چاہیں جس کے اندر 20 KG کا یہ سامان آ سکے، بائی آل مینس کانٹیکٹ می 416-893-2223. آپ شازے جی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ عارفہ جی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہارون بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وی آر آل دا سیم یہاں پر، سب کا کاز ایک ہی ہے کہ وی وانٹ ٹو گو اہیڈ اینڈ ہیلپ دیز فوکس جو بڑی مصیبت میں ہیں. اور میں اور آپ کیا ہیلپ کریں گے، اور میں اور یہ سارے لوگ جو 770 کے ہیں ہم کیا ہیلپ کریں گے. یہ ہیلپ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ راستے بنائے گا. کل تک ہمارے پاس پی آئی اے کا راستہ نہیں تھا، آج صبح سے دیکھیں ایئر کموڈور صاحب کے بھی خود فونز آ رہے ہیں اور وہ ہیلپ کر رہے ہیں. ایوری بڈی از دیر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ. اب میں لے جاتا ہوں آپ کو شاز ملک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام. آج میں بالکل ٹھیک ہوں. بس یہ جب آپ باتیں کر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے جب پی ٹی آئی کے الیجلی جب ایم این ایز خریدنے تھے تب 50-50 کروڑ روپیہ چلا تھا ملک کے اندر ہیں جی, تو وہ میں سوچنا چاہ رہی ہوں اور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی وہ جنہوں نے 50-50 کروڑ دیے تھے الیجلی لوگوں کو خریدنے کے لیے, وہ انٹرنیشنلی لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ہیلپ کرو, اب وہ 50-50 کروڑ روپیہ کہاں گیا ہے, وہ اب کیوں نہیں یوز ہو رہا ہے؟ نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی لیڈر کو نواز شریف, شہباز شریف, مریم شریف, جو ہیں بلاول بھٹو, زرداری صاحب, کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کہا جی 50 لاکھ روپیہ میں دے رہا ہوں یا 1 کروڑ روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو ہے یہ فلڈ ریلیف کے لیے ہے جی, ملک سے ہمیں بڑی محبت ہے, ملک کا بیڑا گرک ہو گیا, یہ ہو گیا. تو ابھی تو واقعی ہوا ہوا ہے نا ملک کا بیڑا گرک,
انشاءاللہ دیکھیں
کسی نے دیا ہے سوائے ایک. آپ دیکھیں ذرا, پھر ہم بات کریں گے, پھر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری عمران خان کے ساتھ, کوئی ہم اس کو سٹبن آدمی کو ہم پسند نہیں ہے, سچ کرتے ہیں, بہت ضدی ہیں, جو کچھ بھی ہے. ایک وہ واحد آدمی ہے جس نے 500 کروڑ روپیہ فلڈ ریلیف جو کے لیے جو ہے وہ جمع کیا ہے, 500 کروڑ. آپ دیکھیں, اور یہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے پیسے بھیجے ہیں اس کے لیے, ایک اس آدمی کی کال کے لیے ود ان فیو آورز.
میں بتاؤں آپ کو کہ ایسا وقت آتا ہے نا, اور یہ آفت کہتا ہوں اس کو میں,
جی
جب ایسی آفتیں آتی ہیں,
نیچرل کلیمٹی ہے نا, نیچرل کلیمٹیز,
نیچرل کلیمٹیز,
جی
تو یہ جب آتا ہے تو اس میں چاہے وہ آپ ایک گلاس پانی کسی کو پلائیں یا ایک پورا کا پورا ٹرک صاف پانی کا وہاں لے آ کے کھڑا کر دیں, اجر جو ہے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, انسانوں سے نہیں مانگنا.
جی جی
میں اگر وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوں تو میں میری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج یہ میری فوٹو اخباروں میں دیکھ کے کل مجھے ووٹ دیں.
جی وہ وہی تو آپ کی بات والی نا, یہ کہ فوٹو والی بات ہے, تو وہ چار کوئی میں نے دیکھے ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز پانی میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ سارے او جی دیکھو ہمارے لیڈر پانی میں کھڑے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. میرے جیسا رپورٹر وہاں پہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتی کہ پانی میں یہ کیوں کھڑے ہیں, ان سے یہ پوچھو کہ یہ پانی کیوں ہے جس میں یہ کھڑے ہیں, یہ تم لوگوں نے جب سے حکومت کی ہوئی ہے چلا رہے ہو, یہ پانی کھڑا ہوا کیوں ہے, کیوں ہے یہ جو تم فوٹو آپس ڈھونڈتے ہو تصویریں کھینچنے کے لیے, وہ تو پانی میں
سب کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. یہ میں تو بلیو اس بات پہ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر دی ہو اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا, اور اگر آپ نے اس صرف دکھاوے کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز ایوری تھنگ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, تو وہ اس کا بھی اثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی راستے میں دے گا آپ کو. تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے کہ بھائی میں صرف $50 افورڈ کر سکتا ہوں یا میں صرف $20 افورڈ کر سکتا ہوں یا میں صرف $10 افورڈ کر سکتا ہوں, تو $10 کی بھی آپ نے چاکلیٹس لے کے ڈال دی اس کے اندر, اور جو لوگ ہزاروں کے ڈالر افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈالرز میں ہمارے ہیں, یہ ہمارے صرف 770 کے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد ڈالر کی تعداد میں وہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ دیں گے اور ضرور دیں گے. جب لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی ہارون بھائی اور ہم نے مل کے کیا تھا اور ایئرپورٹ روڈ اینڈ ڈیری کے قریب ہمیں ایک ویئر ہاؤس ملا تھا, تو وہاں پر آپ یقین مانیں کہ لوگوں کا تاندہ بنا ہوا تھا, قطاریں بنی ہوئی تھی لوگوں کی جو لا کے ڈراپ آف کر رہے تھے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے, پچھلے دفعہ ہمارے پاس 2 ویکس تھے, اس دفعہ 2 ویکس نہیں ہے ہمارے پاس, صرف ٹائم کی کمی بہت ہے. تو انشاءاللہ ہمارے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے, آپ یقین مانیں بہت بڑا دل ہے ہمارا, ہمارے پاس اگر $10 ہوں گے تو ہم $5 اس میں سے دے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ضرور ملے گا, اور یہ جو ہے ہم اس میں ضرور حصہ ڈال کے سب پورے پورے بہن بھائی سب ہمارا حصہ ڈالیں گے اور بہت ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ.
لیکن وہ یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اپنے لیڈرز کی طرف سے کوئی ایک بھی بیان نہیں آیا, تو آئی واز تھنکنگ دا ہول ویکینڈ, میں نے کہا کہ یہ کہاں پہ ہیں, یو نو ابھی بھی بےچارے بیمار ہیں اور پریشانی میں ہیں, اور مطلب ہے مسئلہ ان کا کیا ہے کہ یہ سامنے نہیں آ رہے.
نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ عمران خان کی وجہ سے شاید, جو عمران خان نے کر دکھایا ابھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں کوئی بات آئے یا ان کو इनकी आंखें खुलें और ये भी चाहें कि भाई हम भी ऐसा कुछ करें, बाय ऑल मीन्स बिलावल भुट्टो साहब और सारे शरीफ खानदान वाले आप भी बाहर निकलें और आप भी ऐसे पैसे जमा करें।
मतलब इन लोगों के लिए 1 करोड़ रुपया देना कोई बहुत मुश्किल है मौजूद,
आप भी
करोड़ों की तो इनकी घड़ियां हैं।
नहीं नहीं, आप भी बाहर निकलें, आप भी करोड़ों के हिसाब से पैसा जमा करें और इन्हीं लोगों पर खर्च करें।
नहीं नहीं, जमा क्यों करें, मैं मेरा तो क्वेश्चन ही है ना कि आप अपनी जेब से क्यों नहीं दे रहे, आप अपनी जेब से क्यों नहीं दे रहे भाई। आप मतलब है, आपने अगर 10 करोड़ रुपए की आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकते? आई मीन इट्स सच अ बिग डील फॉर यू कि जिसने 50 करोड़ दिए हैं लोगों को खरीदने के लिए, उनमें से 1 करोड़ नहीं अब ये दे सकते फ्लड रिलीफ के लिए? तो बस ये दिस वॉज माई क्वेश्चन,
ठीक है,
ये था मेरा। अच्छा जी, अच्छा जनाब, हम आपको बता रहे हैं QTL का, क्विक ट्रक लूप का, 2 सितंबर को इनका बड़ा जबरदस्त जो है कस्टमर एप्रिसिएशन प्रोग्राम होने वाला है, तो आप जरूर प्लीज जाएं। यहाँ पे फ्री बारबेक्यू है, $75 का आपको ऑफ दे रहे हैं जब आप इधर ऑयल चेंज कराते हैं। और QTL जो है वो आपको पता ही है कि क्वालिटी के लिए, क्विक ट्रक लूप वाले जो हैं ये क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और ये है एग्जिट 268, आपने लेना है हाईवे 401 पे, तो ये आपको नजर आएंगे। इट्स अ ह्यूज प्लेस, 1010 इंडस्ट्रियल रोड के ऊपर है ये, तो आप वहां जरूर जाएं 2 सितंबर को और एक तो अपना चेंज करवाएं ऑयल और उस पे $75 जो है वो ऑफ लें और फ्री बारबेक्यू जो है उसका भी मजा लें। तो 2 सितंबर को ये जो इवेंट है इस पे आपने जरूर जाना है। और जनाब हमारी वेबसाइट पे जाएं, आपको हम हमेशा ही बताते हैं वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज होती हैं, लोकल न्यूज होती हैं, लोकल न्यूज के नीचे आपको नजर आते हैं हमारे हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी स्टोरीज, वो आप देख सकते हैं। यूथ जोन में स्टोरीज होती हैं, कनाडा के अंदर और स्पोर्ट्स में बहुत सारी न्यूज होती हैं, और फिर राइट साइड पे आपको नजर आते हैं हमारे स्पॉन्सर्स, तो इन स्पॉन्सर्स जो हैं इनको आप प्यार दिखाएं, ठीक है जी। तो ये है हमारी वेबसाइट और उसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ आपको डब्बे नजर आएंगे, उन डब्बों के अंदर आप जाएंगे तो और आपको स्टोरियां मिलेंगी, है जी। जैसे कि एक एफ का डब्बा है, वो हमारे फेसबुक पे आपको लेके जाता है, वहां आप जा सकते हैं। फिर आपको एक इन का नजर आता है, वो हमारा इंस्टाग्राम है, उसमें आप जा सकते हैं। और इस तरह जो है बाकी के डब्बे पे भी आप क्लिक करते जाएंगे उधर जाएंगे, और उर्दू की न्यूज भी है हमारी वेबसाइट पे, तो वो उर्दू की न्यूज जो है वो भी देखा करें। अच्छा जी, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं, और जो सबसे बड़ी तो खबर जो अभी कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा जोर पकड़े हुई है वो वही है, वो अल्बर्टा के अंदर जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, जब वहां पर पहुंची तो उनके ऊपर बड़े ही रेसिस्ट जो है वो रिमार्क्स उनको दिए गए, और वो जो स्लर्स थे वो भी बड़े वल्गर लैंग्वेज थी, बहुत ही गंदी किस्म की प्रोफेनिटी जो थी वो थी, और इनको ट्रेटर कहा गया। तो ट्रूडो साहब जो है उसके ऊपर आज बड़े भड़के हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि ये वायलेंस और इंटिमिडेशन खासतौर पे जो औरतों के खिलाफ है इसको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया गया। एक अगर आपने वीडियो देखी होगी इस सिलसिले में, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो सिटी हॉल के अंदर जा रही थी ग्रैंड पेरे में अल्बर्टा में, वहां पे ट्रूडो साहब जो थे उनको अनाउंसमेंट भी करना था उससे पहले, ऑटोवा में थे ट्रूडो साहब यानी ऑटोवा में थे, वो भी अनाउंसमेंट कर रहे थे LGBTQ2S+ की। तो ये दोनों वाक्य साथ साथ चल रहे थे, और वो फंडिंग की वहां पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, और ये जो थी वो उधर अल्बर्टा में कर रही थी, विजिट कर रही थी, तो उसमें इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो किए गए। तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर को बताया गया तो उन्होंने इसका बड़ा नोटिस लिया, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी लीडर्स हैं उनको कहा है कि भाई आप लोग यूनाइट होएं, क्योंकि औरतें जो हैं खास तौर पे उनको बहुत ज्यादा ये चीजें फेस अप करनी पड़ रही हैं। जब भी कोई औरत अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच या अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यूज करना चाहती है तो उसके ऊपर जो है ये सारा कुछ किया जाता है। और ये सारी उन्होंने जो कहा कि ये जी लानतें जो हैं ये सोशल मीडिया की वजह से हैं, सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हाइप हो जाती हैं, और फिर तो हम रिस्पेक्ट किसी की करते हैं लेकिन ये चीजें जो है हमारी डेमोक्रेसी को भी खतरा है उनसे और हमारी वैल्यूज के भी खिलाफ हैं, तो आप इन चीजों को ना करें। और खासतौर पे जो औरतों के खिलाफ ये सारा कुछ अब सिलसिला शुरू हो गया है तो इसको बड़ा उन्होंने कंडेम किया है, और उन्होंने कहा जी कि औरतों को ये जो हरासमेंट
करना भी चाहिए,
हाँ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमने सुना है कि जो है जो हमारे ऑन्टेरियो के प्रीमियर है डग फोर्ड साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जाहिर आपको पता ही है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई है। अच्छा जी, फेडरल टास्क फोर्स एक क्रिएट की गई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो डिलेज चल रहे थे, लोगों को बड़ी मुश्किलात थी, उसके ऊपर आज ये बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर ऑफ क्राउन इंडिजिनस रिलेशंस मार्क मिलर, और मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी एंड यूथ मार्सी लेन, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फैमिलीज चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट करीना गोल्ड, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट उमर عمر الغبرا منسٹر آف امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ شان فریزر اور پبلک سیفٹی منسٹر مارکو مینڈیسینو یہ سب لوگ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ چیزیں ہم امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مارک ملر صاحب نے کہا لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی ہم پری پینڈیمک لیول کی سروس نہیں پیش کر سک رہے ہیں یہ جو سمر تھا بہت ان ایکسپیکٹڈ رہا کیونکہ اس میں لوگوں نے بہت زیادہ ٹریول کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے لیکن ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں کسی کو ہمیں اپنی ریسپانسبلٹی شولڈر کرنی چاہیے تھی مرسی لین جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی باقی کے بھی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی یہ پرابلمس ہیں وہ لوگ بھی یہ جو ٹریولنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا ہی رہے تھے پچھلے دنوں میں کہ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل فلائٹس اور ایئرپورٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں ریڈیوس کر رہے ہیں نمبر آف فلائٹس بھی اور جو ہے وہ ٹریول کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں تو اسی کا ذکر جو ہے وہ کر رہی تھیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اس وقت جو دوسرے ایونٹس دنیا میں چل رہے ہیں جیسے کہ وار ان یوکرین اور وہ سب چیزیں ہیں لیکن جو ہے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں دنیا میں تو ابھی بھی اور بہت سارے لوگ جو ظاہر ہے کہ چلے گئے تھے پینڈیمک کے بیچ میں کچھ بیمار تھے کچھ واپس نہیں آئے پھر ہائرنگ نہیں ہوئی ورک فورس کے پرابلمز تھے تو بہرحال وہ اب چیزیں جو ہیں ہولے ہولے امپروو کر رہی ہیں تو آج
ایک
پینڈیمک بڑی
اور دوسری وار
جو یوکرین کی
ایک کے بعد ایک
جی بالکل تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ پاسپورٹ میں ویٹ ٹائمز اور امیگریشن اپلیکیشنز میں جو ویٹ ٹائم لمبا ہو گیا تھا وہ اب ہولے ہولے جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی یہ ساری انہوں نے کی ایک نیو سٹڈی آئی ہے جی اینڈ دس سٹڈی از پبلش بائی جی ایچ ڈی گروپ اور اس کے مطابق جو ہے کینیڈا کے اندر یہ جو ڈراؤٹس اور سٹارمز اور یہ ساری کچھ جو نیچرل کلیمٹیز آ رہی ہیں اور فلڈز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے 2050 تک پہنچتے کینیڈا کو
45
جی 40 بلین جو ڈالرز ہیں اس کا اس کی اکانومی کو نقصان ہوئے گا تو اب اس میں جو فردر انہوں نے بریک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ 34 بلین جو ہے وہ تو سٹارمز سے ہوئے گا ڈراؤٹس جو ہیں ان سے 14 بلین ہوئے گا تو یہ اس طرح جو ہے مختلف چیزوں سے بہت زیادہ اکانومی جو ہے اس کو نقصان ہوئے گا تو ہم کو جو ہے کلائمیٹ چینج شوڈ بی اے پرائیورٹی اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمیں نئے اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے اور پروجیکٹس جو ہیں بہت سارے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اگر ہم نے اس پہ کام کر لیا تو ہم کچھ ان کے افیکٹس جو ہیں کم کر سکتے ہیں ورنہ اکانومی بہت زیادہ سفر کرے گی جیسے کہ آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان میں اب اکانومی سفر کرے گی یہ جو اتنے میسو فلڈز جو ہیں وہ آئے ہیں کینیڈین ایسوسی ایشن آف جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ریسزم اور تھریٹس اور انٹیمیڈیشن خاص طور پہ جو ویمن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہی ہے کہ جو پبلک سیفٹی منسٹر سے مارکو مینڈیسینو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کینیڈین ایسوسی ایشن آف جرنلسٹ نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ جو انٹیمیڈیشن ہیٹ ہراسمنٹ جو اور جو ریشلائز جو اور انڈیجنس اور جو ویمن آف کلر ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ جو اوٹاوا کے اندر فریڈم کانوائے آیا تھا اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہیں اور میڈیا جو ہے منسٹر صاحب نے کہا ڈیموکریسی کا ایک پلر ہے اور اگر یہی ٹھیک نہیں چلے گا تو پھر چیزیں کیسے چلیں گی ٹھیک تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی منسٹر صاحب نے کہ ہم نے اوٹاوا پولیس سے بھی اور ٹورنٹو پولیس کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کے خلاف یہ جو اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا جی کہ ویمن میک اپ 52% آف کنٹریز میڈیا ورکرز اور اس کے اندر جو ہے 25% جو ہے نیوز روم کے اندر مائنورٹیز جو سٹاف ہے وہ ویمن کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو یہ مطلب کافی بڑا نمبر ہے اور اس میں عورتوں نے بھی کافی سامنے آ کے جو جرنلسٹ ہیں اسپیشلی کچھ جو پاکستانی اور کچھ جو بلیک ویمن تھیں انہوں نے آ کے سامنے کہا کہ جی یہ کافی ہمارے ساتھ جو ہے ریسزم ہمیں دکھائی جاتی ہے ایسوسیٹڈ پریس کی یہ نیوز ہے جی اور یہ آج کی نیوز بڑی یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پرنسس ڈائنا کی ڈیتھ کو 25 ایئرز ہو گئے ہیں لیکن وہ جو ڈاکٹر ایک ہے جن کا کہ نام ہے فریڈرک میلیز ان کا آج ایک انٹرویو جو ہے وہ ایسوسیٹڈ پریس جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں مطلب انٹرسٹنگ تو کیا ہو سکتی ہیں ذرا چونکانے والی آپ بول سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ پرنسس ڈائنا کی ڈیتھ تھی تو یہ جو ڈاکٹر ہے فرڈینس میلیز یہ کہتا ہے جی کہ میں اس وقت جو وہاں پہ ایلما ٹنل تھا پیرس کا August 31, 1997 کو ایک پارٹی سے میں واپس آ رہا تھا یہ فرینچ ڈاکٹر ہیں तो मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बिल्कुल चुड़मुड़ हुई हुई एक मैंगल्ड बिल्कुल जो है वो मर्सिडीज पड़ी हुई थी। तो मैं एज अ डॉक्टर मैंने एकदम से साइड पे गाड़ी खड़ी की और मैंने देखने की कोशिश की तो ये क्या है। तो कहते हैं कि मैंने उसमें चार लोगों को देखा, तो दो जो थे अपेरेंटली उनकी तो डेथ हो गई थी और कोई उनकी ब्रीदिंग नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन दो जो राइट साइड पे थे उनका मुझे लग रहा था कि अभी भी शायद कुछ उनकी होश है उनको, हालांकि वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। और उसमें से एक जो थी फीमेल पैसेंजर थी और वो लग तो बड़ी मुझे खूबसूरत औरत रही थी लेकिन मैं उसको रिकग्नाइज नहीं कर सक रहा था कि कौन है। तो वो जो आदमी था वो हालांकि चीख रहा था और वो हेल्प चाहता था जो कि ड्राइवर था, तो लेकिन वो जो औरत थी उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे लग रहा था कि वो ड्राइवर तो नहीं अब बचेगा लेकिन औरत शायद बच जाए। तो मैं उसकी तरफ भागा और मैंने उसको बचाने के लिए मैंने उसको कोशिश की और उसको मैं कर रहा था। तो कहते हैं इतने में मैंने देखा कि बेशुमार जो फोटोग्राफर्स हैं वो आ गए और उन्होंने तस्वीरें खींचनी वहां पे शुरू कर दी। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक एक्सीडेंट के लिए इतना बेताचा मीडिया जो है वो कैसे एकदम आ गया और इनको कैसे पता चल गया है कि ये जो अल्मा का जो टनल है पेरिस में इसमें एक एक्सीडेंट हुआ है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल वेल हाई एंड मर्सिडीज कार, तो उसके अंदर वो, तो कहते हैं वो जब मैं उस औरत को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था यानी कि जिंदगी में वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था यानी उनको वो, मैं अपना बैग, मैं भागा अपनी गाड़ी की तरफ और बैग किट अपनी लेकर आया और उसको मैं हेल्प दे रहा था। तो लोग जो हैं वो अपनी तस्वीरें बना रहे थे। तो मैंने पूछा वहां पे किसी से कि भई ये क्या हो रहा है यहां पे ना, ये क्यों इतने लोग आ गए हैं, क्योंकि वो फिर आ गई एम्बुलेंसेज आ गई और वो उन्होंने फिर इनको निकालना शुरू कर दिया रेस्क्यू वर्कर्स ने। और वो तो लोगों ने कहा यू डोंट नो हु दिस लेडी वॉज, तो कहते हैं नहीं मैं, मुझे नहीं पता ये कौन थी। कहते हैं शी वॉज प्रिंसेस डायना। तो वो आज इन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को जो है वो दी है।
सोचने की बात ये है कि शी वॉज स्टिल अलाइव,
शी वॉज स्टिल अलाइव। और वो कहते हैं जी कि मैं जो था, सो नाउ आई नो दैट आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसने उससे लास्ट बात की उसने, प्रिंसेस डायना। ये देखें उनकी मर्सिडीज, अगर जो हमारे टीवी देख रहे हैं वो ये देख सकेंगे, जब ये भागे हैं अपना रेस्पिरेटरी बैग लेने के लिए तो वहां पे वो जो आए थे इमरजेंसी के बंदे जो उनको कर रहे थे, तो उस वक्त की ये पिक्चर है। और वो डॉक्टर तो आपको इधर नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उससे पहले जो थे वो ये सारा देख के और अपने, वो कहते हैं जैसे कि मैं गाड़ी की तरफ भागा तो उस देर में ये लोग आ गए सारे। तो वो कहते हैं जी कि इनका जो शोफर था डायना का, हेनरी पॉल, वो ड्रंक था, जो कि बाद में सारी खबर आई थी, और वो स्पीडिंग कर रहा था क्योंकि बहुत सारे कैमरे वाले उसके पीछे भाग रहे थे क्योंकि उस गाड़ी में डोडी अल्फायद भी थे जिनके साथ अलेजली उनका फेयर था। तो वो बचा रहा था इनको, वो चाह रहा था कि इनकी तस्वीरें ना ली जाएं, तो स्पीडिंग की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो वो आज उन्होंने सारी वो डिटेल्स जो हैं, इन्होंने फ्रेंच डॉक्टर जो है फ्रेडरिक मेलीज, इन्होंने कहा जी के देन आई फाउंड आउट लेटर ऑन दैट शी वाज प्रिंसेस डायना। तो मुझे उस वक्त तो कहता है मैं इतना बिजी था अपने काम में कि मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये प्रिंसेस हो सकती है। तो एनीवेज जी आज उनका ये इंटरव्यू सारा जो है सामने है। रॉयटर्स की आज एक ये खबर है जी, और ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि आपको पता ही है कि जिब्राल्टर जो है, जो कि मुसलमानों का कभी बड़ा ही डेन रहा हुआ है, बड़ा रूल किया है यहां पे स्पेन में जब मुसलमान करते थे, तो ये जिब्राल्टर जो है जी आज 180 ईयर्स के बाद इसको ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया गया है। और ये अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक, ये ग्रांट किया गया था इसको ब्रिटिश सिटी का स्टेटस बाय क्वीन विक्टोरिया, लेकिन इन पेपर्स के ऊपर जो है कोई जो है वो किया ही नहीं गया, काम ही नहीं किया गया। और ये जो नेशनल आर्काइव्स थे, अब जबकि क्वीन एलिजाबेथ की टू की जो प्लैटिनम जुबली मनाई गई तो नेशनल आर्काइव्स को ले गए, तो उसमें ये निकला। और आपको पता है कि ये बड़ा ही कंटेस्ट किया जा रहा था और ये स्पेन के साथ, ये जाहिर है स्पेन का हिस्सा है जिब्राल्टर, तो इसके ऊपर जब एक रेफरेंडम कराया गया था तो स्पेन के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम नहीं ब्रिटेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और वैसे भी जब ये ब्रेक्सिट में जा रहा था ब्रिटेन, तो इन्होंने कहा था 2016 में कि ईयू को कि हमारे साथ जब डील करो, तो ईयू ने जो डील की थी उसमें जिब्राल्टर को इंग्लैंड का हिस्सा बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था नहीं। तो अब ये जो है इसको, ये जो आपको पता ही है कि बीच में मेडिटेरेनियन सी करके आता है और फिर ये, तो आज इसको जी फॉर्मली जो अनाउंस किया है, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने बड़ा जी इसको हेल किया है। उन्होंने कहा कि ये कब से हम केस लड़ रहे थे और हम इसको अपना हिस्सा बनाना चाहते थे और अब जो है जाके कहीं ये बनाए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे,
और स्पेन कैसे खामोश है,
कहा स्पेन कैसे खामोश है और ये कैसे اپنا جو ہے اس کو ایک سٹی بنائیں گے, برٹش سٹی بنائیں گے, کیونکہ یہ تو مطلب صدیوں سے اسپین کا سٹی ہے.
Exactly.
تو یہ اب برٹن کا سٹی کیسے بنے گا؟ بہرحال جی آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ برٹن کا سٹی ہے اب, ایک کیونکہ اس کا جو اناؤنسمنٹ تھی 180 ایئرز بیک کوئین وکٹوریا نے کی تھی کہ جبرالٹر جو ہے وہ برٹن کا ایک سٹی ہے. تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اب اسپین کا کیا ریئیکشن آتا ہے اس پہ. ایسوسیٹڈ پریس کی دوسری نیوز ہے جس کی کس کا ذکر ابھی گوری صاحب بھی کر رہے تھے یہاں پہ. یہ جو مقتدی الصدر جو ہیں, شیعہ لیڈر ہیں عراق کے اندر, انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں ریزائن کر دوں گا, تو اس کی وجہ سے عراق کے اندر آج بہت زیادہ طوفان مچا ہوا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ اینگری جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پیلس کے, گورنمنٹ پیلس کے باہر کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ کلیشز ہوئے. ان کلیشز کے اندر 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 15 لوگ جو ہیں وہ جب سیکیورٹی فورسز نے جب پھر گن فائر کیا تو اس میں زخمی ہو گئے ہیں, 12 جو ہیں وہ ٹیئر گیس سے زخمی ہو گئے ہیں, اور کافی اب رائٹس جو ہیں ان کا ماحول ہے عراق میں اس کی وجہ سے. عراقی یہ جو گورنمنٹ ہے جس کو کہ الصدر کی پارٹی نے بہت ہی واسٹ میجورٹی سے ابھی اکتوبر میں جیتا تھا, اس کے بعد جو تھے لیکن ان کے پاس پھر بھی اتنے ووٹس نہیں تھے کہ یہ میجورٹی بنا سکتے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں کسی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بناؤں گا, میرے پاس ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹس ہیں تو اس لیے میں ہی گورنمنٹ بناؤں گا. اس کی وجہ سے یہ جو بہت سارے گروپس تھے جو کہ ایران بیسڈ, جو ایران بیکڈ جو شیعہ گروپس تھے, انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بناؤ گے تو پھر ہم تمہیں گورنمنٹ کرنے نہیں دیں گے, چلانے نہیں دیں گے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں کوئٹ کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے اناؤنس کیا تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں باہر بہت زیادہ بفر گئے اور بہت زیادہ یہ لڑائی جھگڑا چل پڑا ہے. اور یہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سنی اور شیعہ کے بیچ میں, بلکہ جو شیعیٹ گروپس ہیں ان کے بھی بیچ میں اب یہ انٹر فیتھ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو کافی وہاں پہ جو ہے ہنگامے اور شور جو ہیں وہ چل رہے ہیں عراق کے اندر. بلومبرگ کی رپورٹ ہے جی, کیونکہ ہم اب کیپٹل مارکیٹس کی بھی رپورٹس لاتے ہیں, ہمارے ایک کالر نے ہمیں ایک دفعہ کہا تھا اس کی وجہ سے. تو بٹ کوائن جو ہے جی, اٹ ہیز بین, دا ویلیو آف بٹ کوائن ہیز ڈراپڈ بلو $20,000, کیونکہ اس میں کنسرنز آ گئے ہیں کہ فیڈرل ریزرو نے اپنا جو ہے جیسے ریٹ ہائک کیا تھا یو ایس کے اندر, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اور بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ریٹ ہے 2.3% سے ڈراپ کیا ہے ابھی اینڈ آف دا ڈے, یعنی 20,000 سے بھی نیچے آ گیا ہے, 19,527, اینڈ اٹ از ہیڈنگ ان ففتھ اسٹریٹ ڈے آف ڈکلائنز. آپ کو پتا ہی ہے کہ فیڈرل چیئر جو تھے جیروم پاول نے اسپیچ کی تھی جیکسن ہول کانفرنس میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں ہم اپنے ریزرو کے, فیڈرل ریزرو کے ریٹس جو ہیں ہائک کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ایم وی آئی ایس کرپٹو کمپیئر ڈیجیٹل ایسٹس ہیں 100 انڈیکس سے یہ ڈراپ کیے ہیں, وچ از 2.5, اور اسی طرح جو باقی کی بھی بٹ کوائن کی کمپنیز ہیں ان کے بھی ریٹس جو ہیں آج کافی جو ہیں وہ ڈکلائن ہوئے ہیں,
بلو 20,000.
یا بلو 20,000, دس از 19,527 ٹو بی ایگزیکٹ, اس کے اوپر جو ہے یہ آ گیا ہے. اچھا جناب, ایک اور جو ہے آج جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کٹا کھل گیا ہے, وہ کٹا یہ کھلا ہے جی کہ اسرائیل کے بہت بڑے ڈائمنڈ ایک بلینئر جو ہیں بینی اسٹین میٹس, ان کے اوپر بڑے عرصے سے ایک کیس چل رہا تھا, اور وہ کیس یہ چل رہا تھا کہ انہوں نے رائٹس لینے کے لیے جو ہے یہ مائننگ کے رائٹس لینے کے لیے انہوں نے جو گنی میں, گنی کے اندر مائننگ کے رائٹس لینے کے لیے جو وہاں پہ لیٹ گنی کے پریزیڈنٹ ہیں لینسانا کونٹے, اس کی بیوی کو بہت سارے پیسے دیے تھے الیجڈلی, اور ان کے اوپر رول کیا گیا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر جو لوور کورٹ تھی اس نے کہ 51.5 million $51.5 million جو ہیں یہ فائن دیں گے, اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس اور کرپٹنگ فورن پبلک آفیشلز اور فورجنگ ڈاکیومینٹس کے بھی چارجز ان کے اوپر چلائے جائیں گے. اچھا, آج یہ جب واپس آئے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر تو ان کے جو لائر تھے مارک بوننٹ, ون آف دا ٹاپ لائرز ہیں جنیوا کے, یہ تو یہ ان کا کیس آج تک لڑ رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ کوئی ایک روپیہ بھی میرا جو ہے کلائنٹ اس نے کسی کو نہیں دیے ہیں, اور یہ جو بھی لوور کورٹ نے جو بھی یہ کیا اس کے پاس فل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی فیکٹس کی, تو اس لیے لوور کورٹ نے اس طرح کا ڈیسیجن دیا. لیکن آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ مارک بونٹ جو ان کے ٹاپ لائر نہ صرف جنیوا کے تھے, ان کے اپنی بھی ٹیم کے تھے, وہ آج ان کے ساتھ نہیں تھے, تو یہ اکیلے آئے ہیں اپنا کیس لڑنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو کچھ بھی میرے اوپر ایلیگیشنز لگائے ہیں یہ رانگ لگائے ہیں. 2019 की फोर्ब्स मैगजीन की जो एक रिपोर्ट आई थी ऑन वर्ल्ड्स बिलियनर्स, जो वो निकालते रहते हैं हमारा दिल दुखाने के लिए रिपोर्ट्स, तो उसके अंदर फोर्ब्स मैगजीन ने कहा था कि ये जो हैं बेनी स्टीनमेट्स जो हैं, इनकी नेटवर्थ जो है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स को टच कर रही है एंड इट इज गोइंग अप, और ये जो इनके एक्विजिशंस हैं ये सारे जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं माइनिंग राइट्स और वो ले रहे हैं सारी दुनिया में, उससे ये और भी ऊपर जाएंगे। तो मतलब ये काफी जो है ना सिर्फ ये कि ये डायमंड्स का करते हैं बल्कि ये और भी माइंस जो हैं वो लेते हैं क्योंकि इनका आयरन ओर का भी काम है बहुत सारा। तो ही इज अ रिच 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 मैन। तो अब ये सारे जो हैं ये खुल गए। अच्छा, इसके अंदर जो ये जो इन्होंने खोला है इसके खिलाफ, इसके अंदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है ये इतना बड़ा कोई केस ना होए, लेकिन कॉन्स्टेंटली चूंकि सारी दुनिया कहती है कि दुनिया सारी का काला धन जो है स्विस बैंक्स में जाता है, तो इसलिए शायद स्विट्जरलैंड ये बताने की दुनिया को कोशिश कर रहा है कि नो आई कैन मेक एन एग्जाम्पल इवन ऑफ द बिलियनियर्स जो हमारे मुल्क में आके पैसा रखते हैं When necessary, जब उनको सूट करता है, तो अपना वो इमेज थोड़ा ठीक करने के लिए वो इस तरह का कोई ये काम कर रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर कोई सच्चाई ना होए, तो उस बंदे ने ऐसा कुछ भी ना किया हो। अब आप कह रहे थे ना उस दिन खबरें बहुत कम हो गई हैं, वो सब्सक्रिप्शंस वापस आ गई हैं मेरे पास। अच्छा जी, वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक न्यूज है और इसके मुताबिक लीबिया के अंदर जनाब बेतहाशा राइवल गैंग्स जो हैं उसके अंदर, यानी कि गवर्नमेंट के जो राइवल गैंग्स हैं उनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और इसकी वजह से 32 लोगों की वहां पे डेथ हुई है, 159 लोग जो हैं वुंडेड हैं। ट्रिपली के अंदर ये कह रहे हैं पिछले दो साल में वर्स्ट राइड्स हैं और फाइटिंग्स जो हैं ये यहां पे हुई हैं। यहां पे गाड़ियां जलाई गई, टायर जलाए गए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तबाह किया गया। इसके अंदर एक जो थे अनफॉर्चुनेटली इनके बहुत बड़े कॉमेडियन थे मुस्तफा बर्राका, तो वो बड़ी वो इस तरह की वीडियोज बनाते थे और बड़ा मजाक उड़ाते थे करप्शन का और ये जो मिलिशिया था उसका, उसकी जी चेस्ट में आके गोली लगी है और उनको भी जो है मारा गया, तो उसकी वजह से आज यहां पे बड़े अफसोस का वो माहौल है। अदरवाइज भी मलिक मर्सेट जो कि इमरजेंसी सर्विसेज के स्पोक्स पर्सन है ट्रिपली के अंदर, उनका कहना है कि जी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इवैक्यूएट अप करने की कोशिश कर रहे हैं वो जिन इलाकों के अंदर लड़ाई हो रही है, और वो कहते हैं जी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बताया आज के 64 फैमिलीज जो है उनको इवैक्यूएट किया जा सका, लेकिन ये जितने भी मिलिशिया वाले हैं ये मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो हैं ट्रिपली में उन तक को ये टारगेट कर रहे हैं और एम्बुलेंसेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो माहौल जो है लीबिया के अंदर भी इराक की तरह बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। अल जजीरा की आज एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जी जो सामने आई है और इसके अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उसने एक ट्रूथ कमीशन बिठाया था और उसमें इन्होंने कहा था कि 2014 में 43 स्टूडेंट्स जो हैं मेक्सिको के अंदर वो गायब हो गए थे अचानक से, और उसमें से जो 6 थे उनको मार दिया गया था बहुत ही जो है वो मिस्टीरियस कंडीशन में। ये जो मेक्सिकन गवर्नमेंट की इंटीरियर अंडर सेक्रेटरी एलेजांड्रो एनकीस नास ने जो हेड कर रहे थे ट्रूथ कमीशन को जो गवर्नमेंट ने इनकी बनाई थी, उन्होंने आज डायरेक्टली सारे निशाने जो हैं अपनी मेक्सिको की मिलिट्री के ऊपर जो हैं वो ताने हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को जिस वक्त उठाया गया था तो ये जिंदा थे, इनको एबडक्ट किया गया था और ये जो है दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेट क्राइम, स्टेट इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है और मिलिट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। इनसे वो कुछ बातें पूछना चाहते थे, जब ये बातें उनको नहीं मिली तो वहां पे अलेजली द ट्रूथ कमीशन ने कहा है कि कर्नल होजे रॉड्रिग्स पेरेज थे वहां पे जिसने के फिर हुक्म दिया कि इन लड़कों को या लड़कियों को जो 6 बच्चे थे स्टूडेंट्स जो थे इनको मार दिया जाए, तो एज अ रिजल्ट इस कर्नल के ऑर्डर पे उनको मारा गया था। हालांकि कई दिन उनको जिंदा रखा गया था, देवर अलाइव, जिस वक्त ये क्रैकडाउन शुरू हो गया था पुलिस का जब मेक्सिकन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये बच्चे किधर गायब हुए हैं, 43 स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ तो मिल गए थे लेकिन 6 जो थे फिर उनकी लाशें मिली थी और बहुत ब्रूटली उनको मारा गया था, तो लग रहा था कि ये कोई आम आदमी नहीं मार सकता है। तो जब ट्रूथ कमीशन बिठाया गया तो उन्होंने जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि इनको मिलिट्री स्टाइल में मारा गया है, और उसके बाद फिर इनको पता चला कि कर्नल होजे रॉड्रिग्स पेरेज जो है ये इसके अंदर इन्वॉल्व था और इसने ये सारा जो है कांड किया था। तो ये आज जो है मेक्सिको में भी आज बड़ी फिर खलबली मची हुई है कि भाई मिलिट्री जो है वो इतने क्राइम्स में और करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो जनाब ये है। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सैटरडे को यानी कि डे बिफोर यस्टरडे फ्लोरिडा की एक जज जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप साहब का जो घर था मार अ लागो के अंदर जहां पे कि ये इसने जो
डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स उठाए थे सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगस्त 8 को, इनको हम रिव्यू करेंगे अंडर अ स्पेशल मास्टर. जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि एक एफिडेविट जो कि अगस्त 26 को भी दिया गया था उसको रिट्रैक्ट करे, जिसके के अंदर ये एविडेंस थी कि जो ट्रंप साहब थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को इम्पीड करने की कोशिश की थी उसकी रिकवरी, और वो चाह नहीं रहे थे कि ये सारे सामने आएं. तो ये जो है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मसला बनता जा रहा है और ये अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एंटर हो गई है ये चीज. क्योंकि जब कोई प्रेसिडेंट जाता है अमेरिका में तो जस्टिस डिपार्टमेंट को तमाम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दे के जाता है, जबकि ये डॉक्यूमेंट्स ट्रंप साहब ने सारे नहीं दिए थे और कुछ बल्कि इनके घर में पड़े हुए थे जो इनके घर से उठा के लाए हैं, जो कि कोई प्रेसिडेंट अपने घर पर लेके नहीं जा सकता है. क्योंकि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो इनकी हैं सिक्योरिटी एजेंसीज उनको देना होता है. अच्छा, ट्रंप साहब के जो लॉयर्स हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट को बोलें कि ये आप डी क्लासीफाई ना करें इन डॉक्यूमेंट्स को, आप इनको खोलने की कोशिश ना करें. और वो कह रहे हैं जो खासतौर पर इनका जो मेन लॉयर है एम इवान कॉरकोरेन, वो कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है उसका ये प्रोगेटिव होता है कि किस डॉक्यूमेंट को वो चाहे कि इसको डीक्लासीफाई किया जाए और किस को चाहे कि किस मटेरियल को डीक्लासीफाई ना किया जाए. और ये चीजें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में बिठाई जाए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, इसका कोई प्रेसिडेंट अमरीका में नहीं मिलता है. तो एज अ रिजल्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ ना ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए. अच्छा, अब इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं वो अब बड़े पजल हो गए हैं. वो कहते हैं जी आज से पहले तो कभी किसी प्रेसिडेंट ने अपने घर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए और कभी ये भी नहीं कहा कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पास रखूंगा. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जाने से पहले या क्लासिफाइड या डी क्लासिफाइड जो जस्टिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं उसके पास भरवा दिए जाते हैं वो सारे जो हैं. तो ये अब कैसे आप कह रहे हो कि ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो ऐसे करे? तो वो बड़े पजल हैं, वो सोच रहे हैं कि भई अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस पे बिठानी है नहीं बिठानी है, ये चक्कर क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है जी.
इससे पहले तो, कभी पूरे अमेरिका के हिस्ट्री में कोई ट्रंप साहब नहीं आए ना.
हाँ, फर्स्ट टाइम, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, यस राइट. तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले आए थे इनके मार-अ-लागो में इनके रेजिडेंस के ऊपर, रेजिडेंस क्या है, पैलेस ही है वो भी, उसके ऊपर जो उन्होंने छापा मारा है तो वो किसके कहने पे मारा है और क्यों मारा है. तो ये भी वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के घर पे सिक्योरिटी एजेंसी वाले छापा क्यों मार रहे हैं.
What is this? That is a big deal. Unprecedented. Never happened before.
Yeah. तो ये सारे चक्कर जो हैं जनाब ये चल रहे हैं. अच्छा जनाब, गोरी साहब ने और राठौर बाजी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि तालिबान के जो रूलिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब साहब, उन्होंने बड़े आज सीरियस एलिगेशंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे लगाए हैं कि ये जो पाकिस्तान कह रहा था कि जी किर्गिस्तान से यूएस ड्रोन उड़ के आए हैं या जो है तुर्कमेनिस्तान से आए हैं या कहां से आए हैं, ये सारा झूठ है. पाकिस्तान की सरजमीन, हालांकि पाकिस्तान ने हमको वादा दिया था जब दोहा अग्रीमेंट में हम बैठे थे और उससे पहले भी और उसके बाद भी, कि कभी हमारी जमीन जो है हम काबुल के अगेंस्ट नहीं यूज करने देंगे. फिर भी हमारे पास जो अपनी इंटेलिजेंस है वो बताती है कि यूएस ड्रोन जिन्होंने आके एमन अज़वेरी के ऊपर हमले किए थे वो यूएस सॉयल से आए थे. तो हम अब जानना चाहते हैं कि ये क्या है और ये क्यों है ऐसा. तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने आज बड़ा इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि ये कंजेक्चरल एलिगेशंस हैं, यानी कि आप कंजेक्चर्स कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, गेस कर रहे हैं, आपका गेस है कि ये ऐसे है. हमारी तरफ से कोई भी इस तरह के ड्रोन्स ना उड़े हैं, ना हमने उसकी इजाजत दी, और आपके ये जो कॉमेंट्स हैं ये हाईली रिग्रेटेबल हैं और आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है. अफगान मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा फॉरन ऑफिस ने, कि मिनिस्टर ने यह तक कहा हमारे पास हालांकि एविडेंस कोई नहीं है कि ये पाकिस्तान से उड़ा, लेकिन हमें लगता है कि ये पाकिस्तान से ही उड़ के आ सकता है, ये और कहीं से नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल जो है ये डिप्लोमेटिक कंडक्ट है, और ये इस तरह की बात अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो हमें नहीं करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और सॉवरेनिटी का जो है वो रिस्पेक्ट और ख्याल किया है, और हम टेररिज्म को हर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन में कंडेम करते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर एलिगेशन जो है बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है और ऐसे नहीं करना चाहिए। जो एक बहुत बड़ा धमाका वीकेंड पे हुआ वो ये हुआ जी कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत जो इनके वेटरन पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के, गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और उन्होंने एक बड़ा ही स्केथिंग किस्म का लेटर लिखा है सोनिया गांधी को। उन्होंने कहा कि ये जो आपके बेटे साहब हैं राहुल गांधी जी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और इसके जो कुछ आसपास के लोग हैं वो ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, दे आर इनएक्सपीरियंस साइकोफेंट्स, और आपकी जो लीडरशिप है वो बस उधर बैठी हुई है, सिर्फ वोटो अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रही है, और कोई ये जो अब आप कह रहे हैं कि जी इंटरनल पोल कराएंगे ये बिल्कुल एक शैम है, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, और मैं 9 साल से सोच रहा था कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूं और मैं आपकी हर गलत पॉलिसी पे आवाज उठाता था, आप लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, यहां तक कि जो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है जो मोदी जी को कहते थे उसके भी मैं खिलाफ था, मैं कहता था इस तरह की चीजें ना चलाई जाएं लोकसभा के इलेक्शन के दौरान क्योंकि ये बैकफायर करेंगी, लेकिन मेरा कोई भी मेरी बात नहीं मानी गई। तो कांग्रेस मुझे लगती है कि सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज और धरने के लिए बस रह गई है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है जीतने के लिए। अच्छा अब जब इन्होंने ये बातें की तो जो हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बीजेपी की जो कांग्रेस मुक्त भारत कैंपेन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो खुद भी कांग्रेस से तंग हैं, वो चाहते नहीं है कि कांग्रेस अब जो है वो आए। अच्छा जी अब इसके अलावा जब ये गुलाम नबी आजाद साहब ने किया तो आज क्या हुआ है कि तेलंगाना के कांग्रेस के जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम ए खान साहब, उन्होंने भी आज रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने वैसे तो बहुत सारे रीजंस दिए, ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, हमारे जो ग्लासेस में हैं वो हैं एम ए खान साहब और जो ग्लासेस के बगैर हैं वो गुलाम नबी आजाद साहब हैं। तो इन्होंने कहा जी कि मुझे लगता नहीं है, यानी एम ए खान साहब ने कहा मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अपनी जो है पास्ट ग्लोरी वो जीत सकेगा, तो इसलिए और मेरे अपने भी एनीवेज पर्सनल रीजंस हैं तो मैं अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहा। तो अब ये बैक टू बैक दो बहुत सीनियर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ये निकल गए हैं, तो ये काफी बड़ा जो है धचका है। तो अब मीटिंग इनकी चल रही है, देखेंगे क्या करेंगे। एंड अवर दीदी इज बैक, दीदी इज बैक, यस, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है जी ममता बनर्जी, आज उन्होंने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को धमकियां दी हैं, उन्होंने सीबीआई को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और बाकी की जितनी भी एजेंसीज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, रिजर्व पुलिस फोर्सेज, दिल्ली पुलिस, सबको कहा है कि अगर तुमने हमारे लोगों को तंग करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए तुम्हारे खिलाफ हम केसेस डालेंगे। और इन्होंने कहा जी के ये जो बीजेपी कोशिश कर रही है ये सारी गंदे हटकंडे कर रही है इन सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे पीछे डालने के लिए, तो मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे वो हम ही जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीतेगी। ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त की जिस वक्त ये जो है इनका टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है इनका छत्रा परिषद फाउंडेशन डे जो है वो मना रही थी, और उसके बीच में इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टेंटली बीजेपी एजेंसियों को यूज करते हुए जैसे कि ईडी, सीबीआई और ये सारे जो हैं ये जो हमारे एमपीज हैं जैसे कि अभिषेक बनर्जी, उनकी बीवी रुजीरा, बंगाल के लॉ मिनिस्टर जो हैं मोलॉय घाटक और ये सारे जो हैं इनके ऊपर ये केसेस डाल रहे हैं झूठे और इनको क्वेश्चन कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का कहना है जी कि हम ये जो हैं मोलॉय घाटक साहब इनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं और ये इनको अभिषेक साहब जो हैं इनको कर रहे हैं 1900 करोड़ के घोटालों के अंदर। अच्छा जी वो कहते हैं जी कि ये जो पार्था चटर्जी स्कूल के जो रिक्रूटमेंट का केस था इसमें ईडी जो है ये इनको कर रही है पार्था चटर्जी को जो है वो कर रही है स्कूल रिक्रूटमेंट के केस में जो प्रोब कर रही है और सीबीआई जो है अनु भरता मंडल जो है उसको कैटल स्मगलिंग केस के अंदर जो है वो कर रही है। तो बोथ ऑफ देम ये जो है ये दोनों मिला के 1900 करोड़ के घोटाले हैं जिसके लिए हम इनको प्रोब कर रहे हैं। दीदी कहती है कि ये सारे झूठे केस हैं, पोलिटिकली मोटिवेटेड है, तुम हमें टीएमसी को जो है वो करना चाहते हो डीमोटिवेट, हम नहीं होंगे और हम ही जीतेंगे 2024 में और हम बीजेपी को ट्राउंस करेंगे यानी कि हराएंगे उनको। मध्य प्रदेश का एक विलेज है जी दिवस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे एक लोकल मस्जिद जो है उसको डैमेज किया गया है। और यहां पे किस्सा यह था कि एक लड़का था मुसलमान सैफी, 20 साल उसकी उम्र थी, उसके साथ एक हिंदू लड़की रितिका जिसकी कि 19 साल उम्र है, दलित कम्युनिटी से है वो, इन्होंने ये भाग गए थे आपस में। और उसके बाद यहां पे जो हिंदू सेंटीमेंट था बहुत ही हाइप कर दिया गया और मुसलमानों के खिलाफ जो हैं वो कॉम्युनल स्लर्स जो हैं वो चांट किए गए, और जो जामिया मस्जिद थी यहाँ पे मध्य प्रदेश की उसको नुकसान पहुंचाया गया। लोकल मुस्लिम्स जो हैं वो कहते हैं जी कि इन्होंने यहाँ पे मस्जिद के शीशे तोड़े, पाइप्स तोड़े और जो हैं वो पक्के जो हैं उनको भी डैमेज किया, यहाँ तक कि नाउज़ बिल्ला कुरान शरीफ को भी उठा के ज़मीन पर फेंका। तो इसके अलावा जो आसपास की जो दुकानें, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और जो और चीज़ें थी उनको भी तोड़ा फोड़ा गया। तो ये आज फिर से मध्य प्रदेश के अंदर जो है माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं जी दिल्ली असेंबली के अंदर ही जमीन पे बैठ के धरना दे रहे हैं, और वो धरना इसलिए दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वी के सक्सेना साहब, इन्होंने खाड़ी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं और 1400 करोड़ का घोटाला जो है इन्होंने किया है, क्योंकि खाड़ी और विलेज इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने मिलके जो इनसे कमीशंस ली थी वो करप्शन केसेस जो इनके खिलाफ खोले गए थे उसमें 1400 करोड़ के घोटाले इन्होंने किए हैं।
करोड़ की कोई
हैसियत नहीं अब रही, खासतौर पर इंडिया में तो बिल्कुल खासतौर पर कोई भी नहीं रही। 100 करोड़, 200 करोड़ ये तो अब मतलब है, ऐसे है जैसे रेवड़ियां हैं।
Exactly.
तो ऐसे है। तो जी इन्होंने 1400 करोड़ के वो कहते हैं जी घोटाले किए हैं। तो इसलिए ये जो आपके एमएलए हैं दुर्गेश फाटक, उन्होंने कहा जी कि ये 2016 में ये सारा इन्होंने ड्रामा रचाया था, और जिस वक्त तक आप ये रिजाइन नहीं करेंगे हम इनको, हम इधर जो है दिल्ली असेंबली के अंदर ही धरना डाल के जमीन पे बैठे रहेंगे और प्रोसीडिंग्स जो है सेशन जो है यानी कि नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान के अंदर मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं जी, उन्होंने आज वो बड़े भड़के हुए थे, उन्होंने वो एक लेटर ले की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी कि ये केपी की और पंजाब की गवर्नमेंट जो हैं, एक वीडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक हुई है जिसमें के जो फाइनेंस मिनिस्टर पिछले थे शौकत तरीन साहब, वो इनको कह रहे हैं कि इनकी ये जो नई गवर्नमेंट आ रही है इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, और IMF ने जो आपको सारी बातें कही हैं मानने को वो आप ना माने। तो वो बड़ा गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि ये है तुम लोगों की मुल्क से मोहब्बत, और तुम लोगों ने ये जो 6 बिलियन जो डॉलर्स का लोन आने वाला था उसको सबोटाज करने की कोशिश की है, और बड़ी उन्होंने सख्त बातें की। उन्होंने कहा शेम ऑन यू, तुम लोग जो है तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोगों को पॉलिटिक्स जो है वो क्विट कर देनी चाहिए, ये तुम्हारी सारी जो तुम लोग चीजें कर रहे हो अपने चेयरमैन के कहने पर कर रहे हो और झूठ बोलते हो और लिमिट्स क्रॉस करते हो और जो है पावर में खान को वापस लाने के लिए करते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम हम बनी गाला नहीं डाल सकते, बनी गाला की ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत है। और तुम जो है मुझे कहते हैं, मैंने केपी के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि तुमने लेटर ऐसा लिखा है IMF को, तो उसने कहा कि नहीं, तो वो कहते हैं जी शेम ऑन यू, क्योंकि मैंने खुद वेरीफाई किया है, जब मैं IMF की मीटिंग पे गया तो वो लेटर लेके वो बैठे हुए थे वहां तो वो कहते हैं तुमको शर्म मगर तुमको नहीं आती। अब होने जी पता नहीं सच की है, वरा जी इन्होंने आज बड़े एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर। एंड जनाब जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक और बात जो की है वो ये है कि जो फ्लड्स हैं उनसे भी जो इनिशियल नुकसान आया है इकोनॉमी को $10 बिलियन का आया है, और वो कह रहे हैं जी कि अभी तक हमारा सर्वे तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन हम उसका सर्वे कर रहे हैं। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो इनसे जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा था, जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि भाई आप फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीख कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पहले हम अपने जो हैं डोनर्स उनको आपने लिया कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा जी अपने डोनर्स से बात करने से पहले हम असेस करेंगे कि डैमेजेस कितने हैं और उसके बाद फिर हम इनको बताएंगे और रिलीफ के लिए हम बात करेंगे। इनका आज कहना था मुफ्ता इस्माइल साहब का कि 2005 का जो आया था अर्थक्वेक और 2010 का जो फ्लड्स आया था उसमें उससे बहुत ज्यादा इस दफा तबाही हुई है, और उस वक्त भी हमने पहले डैमेज असेसमेंट की थी और फिर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और डोनर से बात की थी, तो इस दफा भी हम वो ही करेंगे, फॉलो करेंगे। इसके अलावा जनाब प्लानिंग मिनिस्टर जो एसएन इकबाल साहब हैं वो आज फेडरल फ्लड कमीशन को की एक मीटिंग को हेड कर रहे थे, और इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये जो है बहुत ही वर्स्ट किस्म के फ्लड्स हैं उनमें से एक है जो अभी आया है। उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और FFC जो है उसको कहा कि भई आप रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी रखें और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जिसकी वजह से जो फेक न्यूज जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पे केओस क्रिएट कर देती है वो ना करे और ऐसे फिर से प्रॉब्लम्स ना हुए, और उसका आप जो है अब एक स्ट्रेटजी बनाएं, और ये जो अब जो फ्लड्स आ गए हैं उसमें जो बीमारियां फैलेंगी, मलेरिया, डायरिया, हेपेटाइटिस, डेंगी, उसका ख्याल करें कि वो अब ना फैले, उसके लिए काम करना शुरू करें, और रेलवे ट्रैक्स जो है उसको फौरन आप करें, रिस्टोर करें, और मोबाइल ऑपरेशंस जो हैं वो फौरन ठीक करें. जो फ्लड्स अभी आए हैं जी, जो कि जून 14 से चल रहे हैं, इसने तकरीबन इनकी डिटेल्स के मुताबिक ओवर 5.7 मिलियन लोगों को पाकिस्तान में इफेक्ट किया है. 1000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उससे बहुत ज्यादा है, ये तो गवर्नमेंट की फिगर है. इंजरीज जो हैं ओवर 1500 लोगों को हैं, और लोग जो हैं तकरीबन 498,000 से ऊपर जो लोग हैं वो कैंप्स के अंदर रह रहे हैं. 51,000 से ऊपर लोग जो हैं उनको बहरहाल पाकिस्तान मिलिट्री और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू किया है, लेकिन 727,000 से ऊपर एनिमल्स की डेथ हो चुकी है, और 992,000 से ज्यादा होम्स जो हैं वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर बाजवा साहब, उन्होंने कहा है कि नुकसान इतना ज्यादा है, और अपना एक वीडियो मैसेज भी उन्होंने जारी किया है कि भई आपको हम अपील करते हैं कि फ्लड जो अफेक्टीज हैं उनके लिए आप डोनेशंस दें. तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि कंट्री को रिकवर करने में बहुत सारे साल लगेंगे. आज जो क्वीन एलिजबेथ टू हैं, उन्होंने भी जो प्रेसिडेंट इल्वी हैं उनके साथ बड़ा अफसोस का इजहार किया है, ये जो कुछ भी हुआ है, और जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं. हालांकि गवर्नमेंट की फिगर थी 5.7 मिलियन की, ये कहती हैं 33 मिलियन. बहरहाल जी, उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है और यूके आपके साथ इस वक्त में खड़ा हुआ है. इन्होंने आज जो अपना मैसेज बर्मिंगम पैलेस से रिलीज किया है, उसके ऊपर जो लेटर इन्होंने भेजा है उसके ऊपर इन्होंने साइन किया हुआ है एलिजबेथ आर, तो इन्होंने बड़ा दुख का इजहार किया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी आज पेमरा ने जो ये एक एप्लीकेशन डाली थी कि इमरान खान साहब के तमाम जो एड्रेसेस अब टीवी पे होते हैं उसको बैन किया जाए, उसको रद्द किया है, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो इमरान खान है वो चूंकि अब फ्लड अफेक्टीज के लिए कर रहा है तो ये इनके ऊपर से ये बैन हटाया जाए. तो इनको जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने कोर्ट को असल में बेसिकली कहा था कि आप पेमरा का ये बैन जो है ये हटवाएं, क्योंकि ये आज टेलीथॉन करने वाला है, और उसके लिए फिर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप हटाएं. इसके अलावा जो पहले जो लेटर्स जो थे वो नोटिसेज जो थे वो जारी किए गए थे पेमरा को भी, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं अशरफ औसाफ अली, उनको ये भेजे गए थे कोर्ट की तरफ से, और इनके ऊपर बैन लगाया गया था क्योंकि इनके बारे में कहा गया था कि इमरान खान साहब जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस पैदा करते हैं, इनकी जो स्पीचेस होती हैं मुल्क के अंदर जो है बहुत ज्यादा वायलेंस का जो है वो माहौल पैदा कर देती हैं, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा इनके ऊपर जो है और भी केसेस लगाए गए हैं कंटेम्प्ट के, क्योंकि इन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं उनके खिलाफ कोई जो बात की थी उसकी वजह से. तो बहरहाल जी, आज का तो जो बैन था हटाया गया, और आपको बता ही दिया हमने कि जो टेलीथॉन इन्होंने किया उसमें कितने पैसे जो है वो जमा किए
विद इन थ्री आवर्स.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब एक और भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटीशन है उसको रद्द किया है, और ये थी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ के खिलाफ थी. ये जो पिटीशन डाली गई थी इसमें कहा गया था कि भाई जो आज रद्द किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, उसमें उनको कहा गया था कि भाई ये जो थे चीफ मिनिस्टर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब पंजाब के, इन्होंने कहा था कि मेरा भाई, मैं खुद एफिडेविट साइन करके देता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है इलाज के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन 30 साल हो गए हैं तो ये वापस नहीं आए हैं, तो इसलिए जो है इनके ऊपर कंटेम्प्ट का वो चलाया जाए. इसके ऊपर जो है अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्योंकि ये केस ऑलरेडी लाहौर हाईकोर्ट में चल रहा है तो इसलिए ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है इसको नहीं ले सकती और वही चलाएंगे, और इसको अभी तक जो है चैलेंज हमने नहीं किया और कर भी नहीं सकते हैं, और नैब ने भी अभी कुछ उसके बारे में बात नहीं की है, तो इसलिए लाहौर हाईकोर्ट ही इसको आगे लेके चलेगा. वाशिंगटन पोस्ट की जनाब एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान ने आज बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो शो किए हैं. आपको हमने बताया था कि कुछ दिन पहले जो ट्विटर का के विसल ब्लोअर थे पीटर मुजज़ेटको, उन्होंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो सेंसिटिव डेटा है वो ट्विटर से लेने की कोशिश में उसने ट्विटर इंडिया को कहा है कि जी एक हमारा गवर्नमेंट का एजेंट रखो ताकि उस सारे सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हमारा जो है वो हक हो सके. और उसने एक लेटर लिखा था यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, उसके ऊपर पाकिस्तान ने आज कंसर्न शो किए थे. पाकिस्तान फॉरन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तार अहमद, उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह की जो ढील दिखाई जाएगी, जो जैसे कि विसल ब्लोअर ने भी कहा कि ये ट्विटर के अंदर जो है बहुत वीक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो ये बड़े रिग्रेटेबल हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा अदारा भी अगर बेंड करेगा इंडियन गवर्नमेंट की विशेष के आगे तो फिर जो है कोई भी सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो डाटा सिर्फ इंडिया से निकालेंगे या आसपास के इलाकों के लिए भी निकालेंगे. तो इट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस. और जनाब जो बीजेपी के लीडर हैं और राज्यसभा के एक्स एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये जो एक फिल्म आ रही है राम सेतु, इसकी पूरी टीम को जो है एक नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है कि इन्होंने सारे फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए हैं. इसके अंदर अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुशरत भरूचा और ये जो मेकर्स हैं इसके, इसमें उन्होंने कहा जी एडवोकेट सत्या सबरवाल ने कहा था कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सेथु समुद्रन शिप चैनल प्रोजेक्ट जो है इसको ना आगे लेके जाया जाए, क्योंकि ये फेथ की बात है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे किसी को अगर मिस रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स को तो आगे इस प्रोजेक्ट को लेके नहीं जाना चाहिए. तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आदत बन चुकी है कि वो फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं और मिस अप्रोप्रिएशन से काम लेते हैं, तो इसलिए मैं जो है इस फिल्म के लिए मैं ये लेकर लीगल नोटिस लेकर आया हूं. एंड जनाब मजीद भाई, आपके मारते खम में बड़ी नई चीजें हो रही हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन देयर है जी. आपके जो मारते खम के जो मेयर हैं फ्रैंक स्कॉर्पिटी जो हैं, उन्होंने एक स्ट्रीट जो है ए आर रहमान के नाम पे रख दी है जी. आप जी वो रखी है उन्होंने और उसके लिए जो है ए आर रहमान ने बड़ा इनका शुक्रिया अदा किया है. टू मैन ही हैज थैंक द इंडियन काउंसिल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तवा और पीपल ऑफ कैनेडा एंड द मेयर एंड द काउंसलर. उन्होंने कहा जी मेरे नाम का मतलब ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, इसका मतलब है मर्सीफुल, ये अल्लाह के नामों में से एक है. तो ये सब के लिए है, हम सब जो हैं उस रब के जो हैं गुलाम हैं. तो मैं कहता हूं कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और हेल्थ जो है सब लोग जो कि कैनेडा में रहते हैं उनके पास आए और गॉड की ब्लेसिंग्स आए. और मैं अपने इंडियन बहनों और भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं मुझे इतना फेमस बनाने के लिए. देख लो मजद भाई की हो रहा.